एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
इससे बड़ा नहीं है कुछ काम जिंदगी का।
विनाश किसी को है नाम आदमी का, इससे बड़ा नहीं है कुछ काम।
आपको हमेशा दुखियों की सेवा करना है काम बंदगी का, इससे बड़ा नहीं है कुछ काम जिंदगी का। करना क्षमा किसी
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो, उन्हें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता, ताकि वे तेरे वचनों को सुनकर समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह हमारे घरों का केंद्र। आइए हम पवित्र बाइबल वचन पढ़े जो कि मिलता है भजन संहिता 127 का 1 में। यहाँ भजनकार लिखते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, कहता है भजन संहिता 127 का 1। हमारे जीवन में इतनी सारी विरोधी शक्तियां कार्यरत हैं, ऐसे में एक मसीह घराना कैसे स्थापित किया जा सकता है? ऐसे घराना समाज और कलीसिया को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? एक ईसाई घर ईश्वर का कार्य है। कुछ देशों में तलाक की दर लगभग 50% होने के कारण शायद ईसाई घर की आशीषों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय बहुत पहले ही आ गया है। हमने पिछले पाठों में कई विपरीत संस्थाओं के बीच के अंतरों का अध्ययन किया है, जैसे संसार और कलीसिया, पुराना व्यक्ति और नया, स्वार्थ और प्रेम, मतभेद और एकता, पाप और पवित्रता, अंधकार और प्रकाश, शैतान का कार्य और परमेश्वर का कार्य। आज के पाठ में हम दो और विपरीत संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष परिवार और एक ईसाई घर। दरअसल विवाह उन दो संस्थाओं में से एक है जो अदन के बारी से बची हुई है, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को अदन में आशीष दी थी और उस समय से यह चला आ रहा है। एक मसीह घर की आशीषें बाइबल के अनुसार क्या है, इसे हम पाते हैं भजन संहिता 127 का 1 में और यहूना 2 का 1 से 11 में। हम पाते हैं कि जिस घर को बनाने वाला और जिस घर में परमेश्वर होता है उसमें आशीषें भरी होती हैं। केवल वही जिसने पहला घर बनाया आज हमें एक धन्य ईसाई घर बनाने में मदद कर सकता है। इस तथ्य को भूलना व्यर्थ परिश्रम करना होगा। एक ईसाई घर में किया जाने वाला पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि मसीह की आत्मा वहां निवास करे, ताकि घर का प्रत्येक सदस्य अपना क्रूस उठाकर यीशु के मार्गदर्शन में चल सके। स्वर्गदूत ऐसे घर में प्रसन्न होते हैं जहां परमेश्वर सर्वोच्च होता है और बच्चों को धर्म, बाइबल और अपने सृष्टिकर्ता का आदर करना सिखाया जाता है। हम पाते हैं यूहन्ना 2 का 1 से 10 में एक परिवार में विवाह समारोह था और वहां पर यीशु की माता मरियम को बुलाया गया था और यीशु को भी बुलाया गया था और यीशु के चेलों को भी बुलाया गया था। विवाह में उनका विशेष तथ्य दाखरस घट गया था और यीशु मसीह के माता मरियम के कहने पर यीशु ने उन्हें दाखरस का प्रबंध किया, पानी से उन्हें दाखरस बना करके दिया। ये बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह उनके लिए काम किया। यह पहला चमत्कार बाइबल में यीशु मसीह का रिकॉर्ड हम पाते हैं। प्यारो, इस जगह इस वृतांत से हम इस वर्णन से हम यह पाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को ख्याल किया, उसको बुलाया था अपने परिवार के कार्यक्रम में, अपने परिवार के प्रोग्राम में। इसलिए जो भी उनके घर में घटा प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा किया और वहाँ पर खुशी और आनंद हुई। हमें इससे शिक्षा मिलता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को याद करें और अपने परिवार में, अपने परिवार के प्रोग्रामों में प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं। जब मसीह परिवार का केंद्र बन जाता है तो माता पिता और बच्चे सच्चे प्रेम, आनंद, सद्भाव और उच्च स्तर की आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। मसीह को अपना केंद्र बनाकर जब समस्याएं या प्रलोभन उन पर आते हैं तो वे सुरक्षा के वादे का दावा कर सकते हैं। हम पाते हैं यशाया 59:19 में, जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तब प्रभु का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। परिवार में प्रेम और विश्वास योग्यता होनी जरूरी है। हम इसके विषय में बाइबल में पढ़ते हैं इफिसियों 5:21-31 में। स्वार्थ, उदासीनता, रुखापन, यहाँ तक कि शारीरिक आक्रामकता के रूप में प्रकट होता है और व्यवसाय में व्यभिचार से भी बढ़कर कुछ शामिल है। यह एक अशुद्ध कामुक कल्पना भी है, जैसे हम पाते हैं मत्ती 5:27-28 में। पति पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध के बारे में पौलुस क्या कहता है, इसे हम प्राप्त करते हैं इफिसियों 5:21-31 में और 1 कुरिन्थियों 13:4-8 में भी। हम पाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, जो निस्वार्थ है, जो दूसरों का भलाई अपने से पहले और अपने से बढ़कर देखता है। पौलुस एक श्रेष्ठ शुद्ध प्रेम का वर्णन करता है, जैसे कि मसीह ने कलीसिया को पवित्र और मुक्त करने के लिए उसके प्रति जो प्रेम प्रकट किया। यह उदारता, आत्मत्याग और निष्ठा का प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो कभी असफल नहीं होता। 1 कुरिन्थियों 13:8 कहता है, अगर इसे आदर, शिष्टाचार और प्रार्थना से पोषित किया जाए, मसीह ने कलीसिया से कितना प्रेम किया, इतना कि उसके लिए अपनी जान दे दी। प्रेम को कार्यों में प्रकट होना चाहिए। प्रेरित विवाह में प्रेम के पारस्परिक दायित्व को 1 कुरिन्थियों 7:2-6 में व्यक्त करता है। ये आयतें विवाह में प्रेम प्रदर्शित करने की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। इन आयतों में दी गई सलाह का पालन करने से व्यभिचार को रोकने में मदद मिलेगी। पति पत्नी के बीच प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति उनकी खुशी और एकता के लिए परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। उत्पत्ति 2:24, मत्ती 19:5 और इफिसियों 5:31 कहता है। फिर भी यह घनिष्ठ संबंध केवल दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो हृदयों का मिलन है। यह केवल एक सुखद शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि इतना प्रेम पाने का एक गहरा आनंद है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, कहता है पौलुस इब्रानियों की पत्री में उसका 13:4 में। मसीह पर हमारा ध्यान और विश्वास हमें कैसे निष्कलंक रखता है? याद रखें, क्रूस पर चढ़े उद्धारकर्ता की ओर एक स्थिर दृष्टि मन और हृदय को हर प्रकार की मलिनता से शुद्ध करने में योगदम वाणी द्वारा दिए गए सभी वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों से भी अधिक प्रभावी होगी। यशया 39:14 में हम ईसाई घराने का प्रभाव को पाते हैं। समाज की भलाई, चर्च की सफलता, राष्ट्र की समृद्धि घरेलू प्रभावों पर निर्भर करती है। बहन एलन वाइट कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग प्रेस 349 पृष्ठ में, हीलिंग सेवकाई में, यह अफसोस की बात है कि जब बेबलोन के राजा के प्रतिनिधियों ने हिजकिया के बीमार होने की खबर सुनकर उसे पत्र दिया, तब उसे उपरोक्त उद्धरण की सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। हम यह पाते हैं दूसरा राजा 20:1-11 में। जब आप पद 12-15 को देखते हैं तो तय करें कि हिजकिया को क्या करना चाहिए था। हम पाते हैं यहाँ कि हिजकिया जब बीमार से ठीक हुआ तो बेबलोन से लोग उसको देखने आए। उन्होंने सुना था कि परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से चंगाई किया है, लेकिन जब वे हिजकिया के पास आए, हिजकिया यह बात को उन्हें नहीं बताया कि परमेश्वर किस तरह चमत्कारिक रूप से उन्हें चंगा किया था। वह अपने घर के चीज़ों को दिखलाने लगा और परमेश्वर को और उसके कामों को नहीं बतलाया। बाद में परमेश्वर से पूछा उसके भविष्यवक्ता के द्वारा कि ये लोग जो आए थे वो कहाँ से आए थे और उन्होंने क्या देखा, तो हिजकिया ने कहा, ये बेबलोन से आए थे मेरे पास और उन्हें मैंने अपना घर में जो कुछ है सारा चीज़ दिखाया, सब धन दिखाया। तो उसे संवाद मिला परमेश्वर की तरफ से कि ये धन तुम्हारे पास अधिक दिन के लिए नहीं रहेंगे, ये सब वे लोग ले जाएंगे। यह हिदायत हम सबों को मिलता है जब लोग परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में देखने आते हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के महिमा के बारे में बताएं, ना कि हमारे घरों के बारे में जो हमने किया है, हमारे वस्तुओं के बारे में उन्हें बतलाएं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम परमेश्वर का महिमा नहीं करते हैं और हमारा घर का नुकसान होता है, जो है वह भी खो जाते हैं। अपने प्राचीन लोगों के आत्मिक सुधार और भविष्य के विषय में बोलते हुए प्रभु ने उस दिन की भविष्यवाणी की जब अन्य राष्ट्रों के लोग उनकी ओर बहुत अधिक आकर्षित होंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें यीशु मसीह के धर्म को इतना आकर्षक बनाना है कि अन्य लोग भी अपने जीवन को उद्धारकर्ता को समर्पित करने के लिए आकर्षित हो जाएं। परमेश्वर की कलीसिया अब संसार के लिए एक आशीष बन जा सकता है। परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमारे घरों में आकर के हमें उद्धार देना चाहता है। मरियम, मार्था और लाजर के घर में यीशु मसीह आया करता था। यीशु मसीह उनका मित्र था। यीशु तीनों भाई बहनों के मित्र थे। उनकी उपस्थिति ने उनके घर को धन्य बना दिया था, लेकिन एक खास तरीके से मरियम ने उस मित्र की बुद्धि, क्षमा और उद्धार के लिए उसकी सराहना की। गौर कीजिए कि यीशु ने मार्था से उसके और मरियम के बारे में क्या कहता है। मार्था यीशु मसीह की सेवा करने के लिए लगी थी, लेकिन मरियम यीशु के पास बैठकर उसे सुनने के लिए बैठी थी। मरियम यीशु मसीह से उसके प्रेम और परमेश्वर के राज के बारे में जानना चाहती थी और अधिक जान करके परमेश्वर के राज के नज़दीक आना चाहती थी, लेकिन मार्था अपने सेवकाई के काम को ही ध्यान दे रही थी और वह चाहती थी कि उसका काम को ध्यान दिया जाए और लोग उसके बड़ाई करें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आना चाहता है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आ जाता है तो आप उसके लिए क्या देंगे, आप कैसी तैयारी करेंगे? अगर वे आपके साथ कुछ दिन बिताने आए तो आप क्या करेंगे? बेशक आप उन्हें अपना सबसे अच्छा कमरा देंगे और उन्हें सबसे अच्छा खाना परोसेंगे, लेकिन क्या आपको अपनी बातचीत का तरीका बदलना होगा? अपने पसंदीदा टीवी कार्यक्रम बंद करने होंगे या अपनी पसंदीदा किताबें छुपानी होंगी? क्या आपका परिवार उन्हीं गतिविधियों को जारी रख पाएगा जिनमें आप हमेशा से लगे रहे हैं, या आपको अपनी सामान्य दिनचर्या से हटकर एक कृत्रिम जीवन शैली अपनानी होगी? एक अर्थ में ये आयतें असल में जीवन के लक्ष्यों से संबंधित है। हमारा ध्यान ज्यादातर समय किस पर रहता है? मार्था अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहती है। वह दयालु, विनम्र और एक अच्छी मेजबान बनने में इतनी व्यस्त है कि उसके पास प्रभु के साथ समय बिताने का समय ही नहीं है। आप और मैं बहुत आसानी से यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। जीवन की अच्छी चीजें हमारे अंदर ईश्वर के जीवन का गला घोटने लगती हैं। जब हम ईश्वर और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को अपना प्राथमिक केंद्र बनाते हैं तो हम पाते हैं कि वही हर चीज की कुंजी है। हमारे पास जो कुछ भी है वह उसका है। समय, जीवन, धन, वह सब प्रभु का है। हम इसके द्वारा प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें। यीशु जकै के घर आता है और जकै के घर में उद्धार आता है। जकै एक सच्चा इंसान था। वह यीशु से मिलना चाहता था क्योंकि वह खुद से संतुष्ट नहीं था। वह एक बेहतर जिंदगी की तलाश में था जो इस दुनिया की कोई भी भौतिक संपत्ति या धन दौलत उसे नहीं दे सकती थी। एक दिन जब यीशु मसीह उसके घर में आया तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह सोचता था कि वह तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह कर लेता है और लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे। वह सोचते थे कि वह दूसरों से अधिक कर असूलता है और उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया और उसके घर में आने से उसका जीवन बदल गया, उसका मन परिवर्तन हुआ और वह यीशु मसीह से कहता है कि उसने यदि किसी से अधिक लिया है तो उसे लौटा देगा और चार गुना उसे देगा और अपना आधा धन गरीबों को बांट देगा। यीशु मसीह का उसके घर आने से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके घर परिवार के सभी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसका घर परिवार के सभी लोग का जीवन परिवर्तन हो गया और वे लोग यीशु मसीह को अपनाए। यीशु मसीह के उसके घर में आने से जकै के घर में उद्धार आया। जब मसीह हमारे घरों का केंद्र होता है तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपनी असंभव लगने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उसके प्रेम, बुद्धि और सहारा प्राप्त कर सकते हैं। याद कीजिए, जब मसीह पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने घर की किसी कठिन समस्या का समाधान करने में मदद मिली होगी। माता पिता की अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? माता पिता की जिम्मेदारियां हैं कि वे अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सिखाए, परमेश्वर का आदर करना सिखाए, उसका डर भय में चलाए और उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाए। वे लोग इस तरह करने से अपना आदर भी पाएंगे और उनके बच्चे सही रास्ता में जाएंगे और परमेश्वर उनके परिवार को आशीष देंगे। माता पिता को पूरे परिवार के सदस्यों के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए और उसके आदर्श में चलना चाहिए। इससे बच्चे अच्छे नमूना सीखेंगे और परमेश्वर के राह में चलेंगे। प्यारो, इस पापी संसार में मसीह को केंद्र में रखकर एक परिवार स्थापित करना संभव है। ऐसे घर समाज और कलीसिया दोनों के लिए एक आशीर्वाद होगा। साथ ही ये स्वर्गीय घर के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा स्कूल भी है। तो चलिए हम प्रार्थना करें, हमारे घरों को ऐसा बनाएं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आना पसंद करे और हम यीशु मसीह को अपना घर में न्योता दे, स्वागत करे, और हमारे घर में जब उसे स्वागत करते हैं, उसे निमंत्रण करते हैं, वे हमारे घरों में आनंद लाएंगे, हमारे घरों के हर एक समस्याओं को दूर कर देंगे, और हमें जकई के समान प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। जब घर का शीर्ष व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता है, घर के परिवार के दूसरे सदस्य भी यीशु मसीह को अपनाते हैं और उस घर में आशीष मिलता है। प्यारो, आइए हम अपने मन को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में आने दे और हमारे घरों में आने दे। हमारे घरों की जो भी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से वह दूर होंगी, वह दूर होंगे। आइए हम परमेश्वर के दूतों को अपने परिवार, अपने घरों में जगह दे, ऐसा वातावरण बनाए जिसमें परमेश्वर के दूत आना पसंद करें और खुशी हो। परमेश्वर के दूतों के रहने से हमारा घर खुशहाल और आशीषित घर होगा। आइए हम अपने मन से परमेश्वर के आत्मा को और उसके दूतों को निमंत्रण करें और परमेश्वर को निमंत्रण करें कि हमारा घर बहुत ही आशीषित हो। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हमें तेरे नज़दीक ला, हमें तेरा बुद्धि और ज्ञान से भर दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे, हमें आज ऐसा आत्मा दे कि हम तुझे अपने घरों में, अपने परिवार में निमंत्रण करें, ताकि हमारा घर खुशी से भर जाए और हमारे घर के समस्याएं तेरे सामर्थ्य से दूर हो जाए। तेरा आशीष हम सबों के ऊपर बना रहे पिता। मेरे श्रोताओं को तू बहुत आय से आशीष दे। इस बिंदी को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सोना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaveentist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।